नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का चरण 4 लागू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 के स्तर पर पहुंच गया था, जो बहुत गंभीर की श्रेणी में आता है। इसी बीच दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को कक्षा 9वीं और 10वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। यह फैसला ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने के बाद लिया गया है। सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस जानकारी को तुरंत विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों तक पहुंचाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने सुपरनोवा स्टेंट नाम के एक नए और एडवांस्ड स्ट्रोक इलाज डिवाइस का भारत में पहला क्लिनिकल ट्रायल किया। एम्स ने बताया कि सुपरनोवा को देश की अलग अलग मरीजों की आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। एम्स ने यह भी बताया कि ये देश का पहला स्ट्रोक डिवाइस है जिसे घरेलू क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक अमान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत और आर्थिक संबंध है। भारत जॉर्डन के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है।
बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी, नल से गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प।
बस्तर के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही है, और जहां विकास कभी एक सपना था वहां अब सड़कें, रेल और राजमार्ग बन रहे हैं। सीरिया के मध्य हिस्से में कल इस्लामिक स्टेट ग्रुप के हमले में 2 अमरीकी सेना के जवान और 1 अमरीकी नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पेंटागन ने कहा कि पालमायरा में अमरीकी सैनिकों पर यह हमला पिछले साल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद पहली बार हुआ है जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में हुए हमले के बाद अमेरिका इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सेना को फिर से निशाना बनाया गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमलावर इस्लामिक स्टेट का एक अकेला बंदूकधारी था जिसे बाद में सहयोगी बलों ने मार गिराया। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष जारी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने युद्ध विराम समझौते को फिर से तत्काल लागू करने पर सहमति जताई है। इस बीच थाईलैंड के अधिकारियों ने युद्ध विराम समझौते से इनकार कर दिया है। उधर कंबोडिया ने युद्ध विराम के बारे में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के चेयरमैन केपी शर्मा ओली ने पार्टी के जनरल कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र के दौरान भंग संसद को बहाल करने की मांग की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।